एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा।
दुख उठाएंगे तो एक दिन महिमा पाएंगे, उसका ही संदेश वो घर घर सुनाएंगे, यीशु के पीछे जो अपना
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे नज़दीक आ सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू उन्हें तेरा वचन सुनने के लिए मदद कर और तेरा वचन के द्वारा उन्हें बहुत आयत से आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है हमारे प्रभु परम प्रधान। दाऊद राजा जो एक भजनकार भी था लिखता है भजन संहिता 91 का 1 और 2 पद में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। अपने सृजित प्राणियों के सृष्टिकर्ता, न्यायाधीश और उपकारकर्ता के रूप में परमेश्वर समस्त ब्राह्मण का प्रभुता, समस्त ब्राह्मण पर प्रभुता रखता है। इतिहास के कई दर्शन हैं। कुछ लोगों के लिए इतिहास घटनाओं का एक यादृच्छिक क्रम है जिसका कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। दूसरों के लिए इतिहास को अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के संदर्भ में समझाया जा सकता है। फिर भी कुछ लोग इतिहास को चक्रिया मानते हैं जो हमेशा एक लहर की तरह खुद को दोहराता रहता है। ईसाई रहस्योद्घाटन से समझते हैं कि ऊपर और पूरे इतिहास में एक ईश्वर है जिसने प्रक्रिया शुरू की, इसे बनाए रखा और अपनी योजनाओं को और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमेशा काम करता है। हम खुद की रक्षा करने या अपने भाग को निर्धारित करने के लिए अकेले नहीं हैं। इन बातों को समझना उसकी शक्ति के प्रगटीकरण में इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन को पहचानना जो राजाओं को हटाता है और राजाओं को स्थापित करता है। दानियल कहता है दानियल की पुस्तक 2:21 पद में, यह इतिहास के दर्शन को समझना है। बहन एलन जी वाइट लिखती हैं शिक्षा की पुस्तक उसका पृष्ठ 175 में, केवल परमेश्वर के वचन में ही यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। यहाँ यह दिखाया गया है कि राष्ट्रों की ताकत उनकी घमंडी महानता में नहीं पाई जाती है, यह उस निष्ठा से मापी जाती है जिसके साथ वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं। परमेश्वर सबका सर्वोच्च शासक है। हम प्रकाशित वाक्य 5:13 में इसे पाते हैं। परमेश्वर की सृष्टि का सारा भाग परमेश्वर को सबका शासक मानता है। आइए हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 5 का 13 पद, इसमें लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। प्यारो, बाइबल यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर इस संसार और पूरे ब्राह्मण का एकमात्र सर्वोच्च शासक है। वही स्वर्ग में शासन करता है और वही पृथ्वी पर प्रभुता रखता है। दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहा, इसे हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 29 अध्याय का 10 और 11 पद में। आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ लिखा है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इसराइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझे से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। ये शब्द उस प्रार्थना का हिस्सा है जो दाऊद ने तब की थी जब उसने अपने बेटे सुलेमान को यरूशलेम में मंदिर की योजना प्रस्तुत की थी। दाऊद प्रसन्न था कि इसराइल के हाकिमों और लोगों ने परमेश्वर को उदारता से दे सका था। प्यारो, हमारे पास खुद में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर में हमारे पास सब कुछ है। जब हम खुद को उसके अधीन कर देते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं और विधियों को मानने के लिए एक वफादार दिल देता है। अगर हम उसके प्रति वफादार हैं तो हमारे सर्वोच्च शासक हमारा सर्वोच्च उपकारकर्ता बन जाता है। परम प्रधान मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है, कहता है दानियल की पुस्तक उसका 4:17 पद में। इसलिए दानियल का तात्पर्य है कि भले ही दुनिया का अधिकांश हिस्सा परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, लेकिन वह समय आ रहा है जब दुष्ट शक्तियों को उखाड़ फेंका जाएगा और परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। यह हम पाते हैं प्रकाश वाक्य 11:15 में। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। परमेश्वर की सृष्टि कितनी संपूर्ण है उसका वर्णन पौलुस कुलिसियों 1:16-17 पद में करता है। पौलुस ने ईश्वर की रचना से कुछ भी बाहर नहीं रखा है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी शामिल हैं। यह दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी। यह सिंहासन या प्रधानता जैसे शब्दों के अंतर्गत शामिल अलौकिक सत्ता का कोई भी क्रम हो सकता है। फिर वह बताता है कि सृष्टि मसीह के द्वारा और उसके लिए पूरी हुई, यानी मसीह ही सृष्टि और उसके लक्ष्य का एजेंट है। यह हम देख सकते हैं यूहन्ना 1:3 पद में। मसीह ही वह है जिसमें सभी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। सृष्टि की व्यापकता और मसीह पर इसकी पूर्ण निर्भरता को इंगित करने के लिए शायद ही कोई मजबूत कथन हो सकता है। यहाँ एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों, अस्तित्व के सभी दर्शनों पर परीक्षण कर सकते हैं। प्रकृति अपने सृष्टिकर्ता की गवाही देती है। इसे हम पा सकते हैं भजन संहिता 19:1-6 में। आइए हम भजन संहिता 19:1 पद को देखें। यहाँ पर लिखा है, आकाश पृथ्वी की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। केवल अनंत बुद्धि शक्ति और प्रेम से युक्त कोई व्यक्ति ही दुनिया को अस्तित्व में ला सकता था। सूर्यास्त हिमपात गुलाब में हम ईश्वर की सुंदरता की भावना को देख सकते हैं। ऊपर ऊंचे पहाड़ों में, नीचे की खाई में, पृथ्वी के चारों ओर फैले समुद्रों में और अंतरिक्ष में, अपने पथ पर चलते सितारों में हम ईश्वर की अनंत शक्ति को देख सकते हैं। हम स्वयं ही सृष्टिकर्ता की सबसे सटीक तस्वीर पेश करते हैं। हमारी बुद्धि और प्रेम परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। हमारा भौतिक रूप कुछ हद तक परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। न्याय, दया और सत्य की हमारी भावना परमेश्वर के अतुलनीय और पवित्र चरित्र की एक चिंगारी है। लेकिन हम में भी दुश्मन की कुछ छवि देखी जा सकती है, जिसने हमारे अंदर परमेश्वर की छवि को नष्ट करने की कोशिश की है। यह शैतान का काम है जो हमारा दुष्ट है। सृष्टिकर्ता का सबसे बड़ा काम हमें उसकी अपनी छवि में पुनर्स्थापित करना है। यहूना लिखता है अपना पत्री में, पहला यहूना का 3:2 में, और इसे बहन एलन वाइट भी समझाती है पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स पृष्ठ 45 में। आइए हम भजन संहिता 147:5 पढ़े। यहाँ लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। और रोमियो 11:33-34 कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसकी मंत्री कौन हुआ। क्योंकि हम सीमित हैं इसलिए हम अनंत का अर्थ नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम दुनिया के सभी ज्ञान के बारे में सोचते हैं, चाहे वह अतीत का हो या वर्तमान का हो, तो हम इसकी विशालता को महसूस कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ईश्वर ने इसे सब समझ लिया है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारियों के श्रेष्ठ ज्ञान के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन ईश्वर ही अधिकारी हैं। जब हम सोचते हैं कि विशेषज्ञ की विशेषता में कितना संकीर्ण क्षेत्र शामिल है और स्वाभाविक अन्वेषण का क्षेत्र कितना विशाल है, तो हम उस ईश्वर पर अचंभित होने लगते हैं जिसके पास असंख्य विशेषज्ञों की विशेषता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वह विशेषज्ञ ना हो। ईश्वर का ज्ञान अनंत है और हम उसके सामने अत्यंत विस्मय और विनम्रता से झुके बिना नहीं रह सकते हैं। आई हम यिर्मयाह 31:3 पढ़े। यहाँ लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रियो, आपकी समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, परमेश्वर उसे सुलझा सकता है। आपको समझना चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, परमेश्वर आपके मन की सबसे गहरी गहराइयों में प्रवेश कर सकता है और आपकी सोच और भावना के हर पहलू की सराहना कर सकता है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम अपने तरीके उसे पूर्ण विश्वास के साथ सौंप सकते हैं कि वह हमारे सर्वोत्तम हितों के लिए सब कुछ करेगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम इफिसियों 1:19-21 में इसे देखें। यहाँ कहता है 19 में, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसे बैठाया है। यह पराक्रम और अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। यह भी ध्यान दे कि परमेश्वर अपनी शक्ति को हमारे प्रति प्रकट करता है, अर्थात हमारे हितों की दिशा में। यदि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अपने हाल पर छोड़ दे, तो उसकी शक्ति का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोगों ने यीशु के साथ जो व्यवहार किया, उसकी तुलना परमेश्वर ने यीशु के साथ जिस तरह से किया उससे करें। अगर हम अपने हाल पर छोड़ दें, तो हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। धार्मिक नेताओं ने मसीह को अस्वीकार कर दिया, यूहन्ना 1:11 कहता है, लेकिन परमेश्वर ने मसीह को हमारे उद्धार का माध्यम बनाया। धरती पर किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा महान है ईश्वर की शक्ति। वह स्वर्ग या धरती की सभी शक्तियों का स्रोत है। सबसे शक्तिशाली सूर्य की शक्ति या सबसे छोटे परमाणु की शक्ति का स्रोत भी उसी में है। मनुष्य के मन और शरीर में जो शक्ति है वह उसी से आई है और उसी से बनी हुई है। हम परमेश्वर की शक्ति का एक और सबूत उसकी सृष्टि में देखते हैं, रोमियो 1:19-20। जब हम परमेश्वर की असीम शक्ति पर ध्यान करते हैं तो हम उसके सामने विस्मय और श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं। उसने अपनी आत्मा से आकाश को सजाया है। हम अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर से शक्ति पा सकते हैं, उस पर बाढ़ जोते रहने के द्वारा। मसीहों के लिए शक्ति परमेश्वर देता है, एक महान शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेरितों के काम 1:8 में हम इसे पढ़ते हैं और पाते हैं। चिंता अंधी होती है और भविष्य को नहीं देख सकती, लेकिन यीशु शुरुआत से ही अंत को देख लेता है। हर कठिनाइयों में राहत लाने के लिए उसका मार्ग तैयार रहता है। हमारे स्वर्गीय पिता के पास हमारी जरूरतें पूरी करने के हजारों तरीके हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जो लोग परमेश्वर की सेवा को सर्वोच्च बनाने के एक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वे पाएंगे कि उलझनें दूर हो जाएंगी और उनके पैरों के सामने एक सीधा रास्ता होगा। बहन एलन जी वाइट यह बात लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग नामक पुस्तक में पृष्ठ 481 में। हमारे पास असीमित शक्ति उपलब्ध है, प्यारो हम इसे प्राप्त करने में इतने पीछे क्यों रहे? परमेश्वर सारे पृथ्वी का न्यायी है। अब्राहम ने परमेश्वर को सारी पृथ्वी का न्यायी कहा, उत्पत्ति 18:25 में, और उससे पूछा कि क्या परमेश्वर दुष्टों के साथ साथ एक धर्मी व्यक्ति और उसके परिवार को भी नष्ट कर देगा? अब्राहम को अपने भतीजे लूत की सुरक्षा की चिंता थी, जो अब सदोम शहर में रह रहा था, जो बहुत ही दुष्ट बन गया था। क्या परमेश्वर दुष्टों के साथ साथ एक धर्मी व्यक्ति और उसके परिवार को भी नष्ट कर देगा? यह अकल्पनीय लग रहा था। ऐसा होने का क्या सबूत था? उत्पत्ति 18 की कहानी में अब्राहम अपने स्वर्गीय आगंतुक जो मसीह था से विनती करता है कि परमेश्वर 10 धर्मी लोगों की खातिर पूरे शहर को नष्ट ना करे। एक व्यक्ति का हृदय सभी के साथ न्याय करने की मांग करता है, धर्मी और दुष्ट दोनों के साथ। जैसे दुष्टों को दंडित करना उचित है, वैसे ही धर्मी लोगों का दंड से मुक्त होना भी उचित है। जबकि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता और ब्राह्मण का सर्वोच्च शासक है, यह भी सिखाती है कि वह सर्वोच्च न्यायाधीश भी है, जो धर्मियों के उद्धार के लिए अपने बचाव अनुग्रह का प्रयोग करेगा और दुष्टों और विद्रोही लोगों को अंतिम न्याय देगा। परमेश्वर न्याय का कार्य यीशु मसीह के हाथ दिया है, यह बाइबल कहती है यूहन्ना 5:26-27 पद में। और यीशु कहता है यूहन्ना 5:30 में कि उसका न्याय साफ है, अच्छा है, सच्चा है, क्योंकि वह अपना इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले परमेश्वर पिता का इच्छा पूरा करना चाहता है। यीशु मसीह न्याय करने के लिए सर्वोच्च रूप से योग्य हैं और हम उस पर अपना भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और एक निष्पाप जीवन व्यतीत किया। हमारे सब कमजोरियों को और परीक्षाओं को वह समझ सकता है और हमें बल दे सकता है, हमें वह विजयी होने की शक्ति दे सकता है। हम उस पर अपना चिंता छोड़ दें और ना डरें। प्यारो, परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पृथ्वी को विद्रोह से वफादारी की ओर पुनर्स्थापित करने के उनके प्रयास सफल होंगे। इस दुनिया का अधर्म अंततः इसे नष्ट कर देगा और बुराई की इस दुनिया की जगह धार्मिकता की एक नई दुनिया आएगी, जिसे परमेश्वर तैयार करने जा रहा है हमारे लिए जो उसमें विश्वास करते हैं। पापियों के लिए मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर द्वारा बनाई गई यह दुनिया अपने मूल उद्देश्य पर पुनर्स्थापित होगी। परमेश्वर की छवि में बनाई गई मानव जाति नैतिक रूप से उसी छवि में पुनर्निर्मित होगी। परमेश्वर अपनी बनाई हुई चीजों को बनाए रखने या पाप के भयानक शासन पर विजय पाने के लिए अनुमति या मार्गदर्शन के लिए किसी अन्य प्राणी पर निर्भर नहीं है। हालांकि परमेश्वर राजाओं, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, राज्यपालों और अन्य व्यक्तियों जैसे मानवीय एजेंटों का उपयोग ऐसे साधनों के रूप में करना चुनता है जिनके द्वारा पृथ्वी पर उसके अनुग्रह के उद्देश्य पूरे हो सके। शास्त्र सिखाते हैं कि व्यक्ति और राष्ट्र दोनों ही परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों का पालन करने के माध्यम से श्रेष्ठ हैं। ये सिद्धांत परमेश्वर की प्रकृति का एक स्वाभाविक प्रवाह है जो प्रेम है। वह प्रेम उन सभी को आशीर्वाद देता है जो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनने देते हैं, चाहे वे व्यक्ति हों या राष्ट्र। प्यारो, यह परमेश्वर का शुभ संदेश आपको आज आता है। आप परमेश्वर के सिद्धांतों को अपनाएं, उसके प्रेम को ग्रहण करें। परमेश्वर आपको बुराई से बचाना चाहता है और ऐसे देश, ऐसे दुनिया में ले जाना चाहता है जहां धार्मिकता रहेगी, पाप नहीं रहेगी। परमेश्वर हमारा न्यायी है, वह सच्चा न्याय करेगा, हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हमें बचाएगा। परमेश्वर धर्मी है, आइए हम उसमें विश्वास करें, उसके पास आए और उसके रास्ता में उसके पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें मदद करे, पवित्र आत्मा का शक्ति हमें अगुवाई करे और सामर्थ्य और मदद करे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी है पिता परमेश्वर। तू मनुष्य जाति को बनाने के लिए सब कुछ किया है, हमें अति प्रेम किया है और हमें अपने पास ले जाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हम सब तेरे पास आते हैं पिता, मेरे श्रोताओं के संगों में आशीष दे, हम सबों को राज में बचा ले।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।